नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों के लिए मतदान संपन्न। राज्य के सीमा क्षेत्रों किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में रही कड़ी चौकसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 अप्रैल को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कहा अभी गर्मी से राहत के आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र कल आयोजित किया जाएगा। विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा ने एक दिवसीय सत्र की कार्यसूची जारी की है। कल पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के संबोधन के साथ कार्यवाही की शुरुआत की जाएगी। एक रिपोर्ट।
राज्य में नई सरकार के गठन के बाद ये सत्र विशेष माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस विश्वास मत के जरिए ही तय होगा कि सरकार को विधायकों का पर्याप्त समर्थन है या नहीं। सदन में संख्या बल को देखते हुए एनडीए दल विश्वास मत प्राप्त करने को लेकर आश्वस्त हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वास प्रस्ताव आसानी से पारित होगा।
कल जो विश्वास मत प्राप्त करने वाले या जो हमारा प्रस्ताव है, जो हम इत्मीनान हैं या संतुष्ट हैं कि हम विश्वास मत अच्छे से हासिल करेंगे।
विधानसभा की 243 सीटों में से 201 सीट एनडीए के पास है। वहीं राजद के 25, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 4, एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 सदस्य मिलाकर विपक्ष के कुल 41 विधायक हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनके इस्तीफे के कारण एक सीट रिक्त है। समाचार कक्ष से निधिश्री।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाजपा का संगठन और उसके कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। श्री चौधरी पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान से जुड़ी एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो गया। दोनों राज्यों में रिकॉर्ड मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में सुरक्षा चौकी बनाकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी गई। साथ ही वाहनों की आवाजाही की निगरानी भी की गई। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुरक्षा बल अभी भी पूरी चौकसी बरत रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। श्री खड़गे ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की थी। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के प्रधानमंत्री का भारत का अपमान किया है। कांग्रेस को ये भारी पड़ेगा। चुनाव आयोग ने भी नोटिस दिया है कि चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समग्र व्यक्तित्व विकास और जीवन मूल्यों को समाहित करने की निरंतर प्रक्रिया भी है। श्री बिरला ने नई दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के बदलते युग में युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे नवाचार, मूल सोच और प्रौद्योगिकी की दिशा में आगे बढ़ें।
अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लोकतंत्र के संस्थाओं के अंदर भी आने वाली पीढ़ियों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। जब हमारे बाल्यकाल से ही बच्चा नया इनोवेशन, नया अनुसंधान, नई टेक्नोलॉजी से दक्ष होगा तो निश्चित रूप से आज भी नेतृत्व करने वाला है और दुनिया में आने वाला समय भारत के नौजवानों का है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं परीक्षा 2026 का दूसरा चरण 15 मई से आयोजित करने का निर्णय किया है। ये परीक्षा वैकल्पिक है और जो विद्यार्थी पहले चरण में प्राप्त अपने अंक सुधारना चाहते हैं वे इसे दे सकते हैं। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किन्हीं तीन विषयों में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य एक शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों को दूसरा अवसर देकर परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 133वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, भागलपुर, जमुई और वैशाली समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में कई जिलों में आज भी लू की स्थिति बनी रही। प्रचंड गर्मी के कारण दिन में सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रही। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के दक्षिणी भागों में अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। वहीं कटिहार और पूर्णिया समेत राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।
दिनांक 24 अप्रैल को प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों में वर्षा होने जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। दिनांक 24 अप्रैल को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में लू, उष्ण लहर चलने की संभावना है। साथ ही अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल जिलों में आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि वो पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न स्थिति में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आयोजित शिविरों के माध्यम से 5 किलो के लगभग 12 लाख सिलेंडर बेचे गए हैं।
5 किलो के सिलेंडर्स 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 20 लाख से अधिक सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। इसके अलावा कल लगभग 80,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई थी। इसके साथ साथ माइग्रेंट लेबर्स तक ये 5 किलो के सिलेंडर्स को आसानी से पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार कैंप लगा रही हैं और 3 अप्रैल से लगभग 7,800 ऐसे कैंप लगाए जा चुके हैं और इन कैंप्स में जो सिलेंडर्स की सेल हुई है उसकी संख्या लगभग 1,17,000 है।
इधर प्रदेश भर में उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। सिलेंडर की जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि आज धावा दल ने 5 गैस एजेंसियों पर छापेमारी की है। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल अंतर्गत जमालपुर क्यूल रेलखंड पर निर्माण कार्यों के कारण 26 अप्रैल को मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। मालदा मंडल के DRM मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके कारण कई रेलगाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जमालपुर सहरसा पैसेंजर समेत कई सवारी गाड़ियों का परिचालन 25 और 26 अप्रैल को रद्द रहेगा। वहीं मालदा टाउन क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, साहेबगंज जमालपुर मेमू, अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस, बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, दुमका पटना समेत कई रेलगाड़ियों के समाप्ति स्टेशन और परिचालन समय में परिवर्तन किया गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे राज्य के विभिन्न जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इसी क्रम में आज मधुबनी जिले के जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 227 कमला शाखा नहर स्थित नेपाली रेलवे गुमटी का निरीक्षण किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने एसएसबी की 48वीं बटालियन के अधिकारियों के साथ जयनगर स्थित मुख्यालय में समीक्षा बैठक भी की। बाबू वीर कुंवर सिंह विजय दिवस के अवसर पर आज पटना के वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदानों को याद किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदानों को याद किया है। इधर भोजपुर स्थित जगदीशपुर किला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आरा के रमना मैदान में भी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया और पुलिस अधीक्षक राज ने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने काराकाट अंचल में चल रहे पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य में धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी जताई है और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलडी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर वापस नहीं करने के आरोप में वांछित अदालत यादव उर्फ सूर्य नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया। गंभीर हृदय रोग से पीड़ित सारण जिले के 5 बच्चों का मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत मुफ्त इलाज कराया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने बताया कि अहमदाबाद के एक अस्पताल में इनका ऑपरेशन होगा। सभी बच्चे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। कटिहार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को भेज दिया है। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह की 47वीं पुण्यतिथि पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत अथमल गोला में मनाई गई। इस अवसर पर गणमान्य लोगों और उनके परिजनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। गोपालगंज के अम्बेडकर भवन में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जिले में चल रही जनगणना के तहत स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में जिला स्तरीय जनगणना समिति के सदस्य और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। पूर्वाहन 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों के लिए मतदान संपन्न। राज्य के सीमा क्षेत्रों किशनगंज पूर्णिया और कटिहार में रही कड़ी चौकसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 अप्रैल को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कहा अभी गर्मी से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।